ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा स्वभाव, चरित्र, व्यवहार जितना निर्मल होगा उतनी ही सफलता मिलती रहेगी। बाबा हम सभी बच्चों को पावन निर्मल बनाने के लिए आए हैं। आज हम सभी के समक्ष ऐसी विभूति उपस्थित है जिन्होंने अपना जीवन बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता में समर्पित किया, बहुत छोटी आयु में ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसे रतन बहुत थोड़े होते जिनका स्वयं भगवान नाम लेते हैं। कई बार मुरली में हम निर्मला दीदी जी का नाम सुनते हैं, वो हम सभी अभी समक्ष देख रहे हैं। ये वही हस्ती है जिनका मुरली में नाम लेते हैं भगवान। तो हम सभी दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय निर्मला दीदी जी, पिछले 55 वर्ष से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, अर्थात अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। बचपन से ही आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रही, दिव्यता की प्रतिभा मूर्त, योग की गहराई, ज्ञान की बहुत बहुत ऊंचाई, देश विदेश में अनेक स्थानों पर जाकर लाखों आत्माओं को आपसे लाभ मिला। आपसे केवल ज्ञान के आधार से उन्होंने लाभ नहीं लिया, लेकिन आपका शांत स्वभाव, मीठी सरल वाणी, इससे भी अनेकों ने गुण उठाया। ऐसे निर्मला दीदी जी अभी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में सेवाएं दे रहे हैं। सारा ज्ञान सरोवर का व्यवस्थापन उनके हाथों में है। पिछले 55 वर्ष से बाबा की यज्ञ सेवा के आधार स्तंभ है। दीदी जी हम सभी के सामने एक ऐसा सुंदर विषय लेकर पधारे हैं। विषय है जीवन में न्यारा, प्यारा और बेफिकर बादशाह। सभी को ये बस पसंद है कि हम न्यारे भी रहे, प्यारे भी रहे और स्थिति बेफिकर रहे। तो ऐसे दीदी जी से अभी सुनते हैं जीवन में किस तरह से ये सब बातों का अनुभव करे। आदरणीय निर्मला दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा हमें कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, और हम सभी अन्य धर्म वालों से या साधु संन्यासियों सबसे चैलेंज करते हैं कि आप लोगों को तो घर बार छोड़ना पड़ना पवित्र रहने के लिए, लेकिन हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि घर गृहस्थ में रहते, अपना परिवार संभालते, नौकरी धंधा संभालते, हमें न्यारा और प्यारा रहना है। तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने शुरू में 14 साल अपने लौकिक परिवार के साथ भी रहे और साथ साथ न्यारे रहे, क्योंकि उस समय करीब 400 भाई बहने संस्था में यज्ञ में रहते थे, परंतु बाबा की जो दृष्टि, वृत्ति और कर्तव्य थे बहुत ही न्यारे रहे। उनका बिल्कुल ना अपने शरीर में मोह था, ना परिवार में मोह था। उनकी वृत्ति चाहे जसोदा मैया थी, चाहे निर्मल शांता दादी थी, चाहे ब्रिजेंद्रा दादी थी, उनकी दृष्टि और स्नेह जितना ही अन्य भाई बहनों के साथ था, उतना ही अपने लौकिक परिवार के साथ रहा और बेहद का प्यार रहा। तो इसी रीत से हम भी यदि परिवार में रहकर अपनी दृष्टि को अलौकिक बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा प्यार तो रहेगा परंतु न्यारे अर्थात नष्ट मोहा होकर रह सकते हैं। तो देखना है कि प्यार के सागर से हमें प्यार तो लेते रहना है, क्योंकि बाबा के भंडारे में सब खजाने भरपूर पड़े हैं, इसलिए हम उनको प्यार का सागर कहते हैं। उस प्यार के सागर से हम जितना प्यार लूटेंगे हम औरों को लुटा सकेंगे। तो इसलिए हमको कभी ये नहीं कहना है कि ये लोग ये उनकी चाल चलन ऐसी है, हमारी निंदा करते हैं तो हम उनको कैसे प्यार करें, ये तो जैसे हमारे शत्रु हैं। तो यही बाबा ने कहा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो जय बाबा ने ज्ञान की ये शिक्षा दी है, ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिकल में करके दिखाई और उसका सबूत तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे न्यूज़पेपर में एक बार ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा बाबा को बदनाम किया कि उनके पास 400 रानियां हैं, उनको अभी 16108 रानियां चाहिए। तब जब जगदीश भाई ने पूछा कि बाबा क्या करें, इस पत्रकार को एडिटर को हम कुछ पत्र लिखें और उनको विरोध करें, तो बाबा ने कहा नहीं, उनको बुलाकर उनको चाय पानी दो और कहो आप हमारे मित्र हो, और वो सचमुच मित्र बन गया। तो ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिकल में दिखाया, हाँ, गाली देने वाले को गले लगाओ। कोई भी बाबा के सामने आता था तो प्यार से इतना पिघल जाता था कि वो समझो उनको मारने के लिए भी आता था, उनका खून करने के इरादे से आता था, परंतु उनको पिता जैसा प्यार का अनुभव होता था और वो वहां से चला जाता था। तो इसी रीत से हमारी भी यदि दृष्टि वृत्ति हरेक के प्रति कि ये प्रभु के लाडले बच्चे हैं ऐसी रहे तो हमारा प्यार सबके साथ रहे, क्योंकि उन्हों का हमें अवगुण नहीं देखना है, विशेषता ही देखनी है। और जितनी औरों की विशेषता देखते रहेंगे हमारी स्नेह भरी दृष्टि रहेंगे। फिर न्यारे रहने के लिए बाबा हमें युक्ति बताते हैं। वैसे ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत न्यारेपन का सबूत दिया था कि बाबा जब विश्व किशोर भाव बीमार थे, बंबई में थे, ऑपरेशन कराया, तो बाबा मुरलियों में भी कहते थे कि मेरे सपूत बच्चे को मैं सकाश दे रहा हूँ, रात को जाग जाग कर सकाश दे रहा हूँ। पीछे जब भाव ने शरीर छोड़ा तो वो बंबई से बहनों ने फोन किया और पूछा कि क्या करें, भाव के शरीर को यहाँ आबू ले आवे। तो बाबा ने कहा नहीं, अभी आत्मा तो चली गई, शरीर को यहाँ लाने की क्या दरकार है। तो इसलिए जितना भी प्यार था, जितना भी भाव, बाबा का राइट हैंड था, परंतु बाबा ने जब समाचार सुना तो भी न आश्चर्य हुआ न अपना कोई, स्नान करते थे वो बंद किया, बस सुना और बाथरूम से ही जवाब दे दिया कि भले वहां ही उनका अंतिम क्रिया कर लेना। और जब समझो वहां से बंबई से रोज मैसेज आते थे, संदेशी रोज भोग लगाकर मैसेज भेजती थी। बाबा ने मधुबन में सुनाने नहीं दिया। बाबा ने कहा यदि लोग है ये मैसेज सुनेंगे तो उन्हों का बुद्धि योग भाव में जाएगा, तो जो सुनाने वाला है उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। तो इस रीत से बाबा ने न सिर्फ खुद तो नष्ट मोहा बने परंतु कर्मों की गति भी समझाते रहे और औरों को भी नष्ट मोहा बनाने की उन्होंने युक्तियां बताई कि देखो जैसे गीता में है सब मरे पड़े हैं। पहले तो हम जब ज्ञान में आते तो हम मरजीवा बनते हैं, तो मरजीवा बन गए माना मर गए, तो हमारे लिए तो लौकिक सब मर गए। बाकी हाँ उनको हम अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो मोह नहीं पड़ेगा, अपने देह में भी बाबा कहते हैं मोह ना हो। क्योंकि ये जब हम बाबा के बने हमने बाबा को कहा बाबा सब कुछ आपका है, न तन मेरा है न मन मेरा है न धन मेरा है, सब कुछ आपका है। तो जब ये हम अपने आप को बलिहार जाते हैं सब बाबा को अर्पण कर देते हैं तो मेरा तो कुछ रहा नहीं, मेरा नहीं रहा तो मोह क्यों पड़ेगा। इसलिए हाँ सबसे पहले तो हमें मेरापन मिटाना है, सब कुछ बाबा का है। वैसे भी देखो घर में बच्चा जन्मता है, यदि कोई पूछता है कि क्या हुआ कैसे हुआ कितने बच्चे हैं, तो क्या जवाब देते हैं लोग, जो भगवान ने दिया तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी यदि कोई पूछते हैं आपके पास कितना धन है तो कहेंगे भगवान ने जो दिया है। तो वैसे बोलने के लिए हम कहते हैं भगवान ने दिया है, परंतु मानने के लिए क्या मानते हैं, मेरा मेरा मकान मेरी गाड़ी मेरा धन मेरा बच्चा। तो ये है जब मेरापन मिटाएंगे तो नेचुरली है न्यारा और नष्ट मोहा बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो कि बाबा ने हमें ये संभालने के लिए सब कुछ दिया है, हम ट्रस्टी है। चाहे धन दौलत है वैभव है चाहे परिवार है, सब कुछ बाबा का, सब बाबा के बच्चे, सब प्रॉपर्टी बाबा की। तो क्या है हमें ट्रस्टी होकर संभालना है, ना कि अपने को गृहस्थी समझना है, सब कुछ करना है। तो इसी रीति से बाबा ने कहा कि देखो जब आप बाबा के साथ सर्व संबंध बांध लेंगे।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता विनाश खड़ा शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
ओम शांति। तो जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध बांध लेंगे तो नेचुरली है बाबा से हमें हर संबंध का सुख मिलेगा, हमें सहारा मिलेगा और मदद मिलेंगी। तो नेचुरली है फिर हमें लौकिक मित्र संबंधी या साधनों का आधार लेना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि यदि हमने बाबा से वो संबंध का सुख नहीं लिया है तो हमारे अलौकिक संबंधियों से हम सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं और उनके ऊपर आधारित होकर मोह में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, औरों से तोड़ो। तोड़ो माना उनको छोड़ना नहीं है परंतु अपना नहीं समझना है, सब कुछ बाबा का है। तो एक तरफ स्नेह भी हो तो दूसरे तरफ न्यारे भी हो। और क्या है कि जितना हमारी बुद्धि में ये आ जाएगा कि बाबा हमें अभी भी कितना अविनाशी खजाना देता है और भविष्य में भी बाबा हमें कितना वैभव, हमारे इतने बड़े बड़े महल होंगे, उस महलों की भेंट में यहाँ के मकान क्या है, वहाँ हरे के पास हम आंगन में एरोप्लेन खड़ा होगा और यहाँ उसके भेंट में BMW कार भी क्या है। तो जब सत्युगी नजारे हमारी बुद्धि में होंगे तो ये कलयुगी साधन वैभव वो कोई भी हमें आकर्षित नहीं करेगा, उनसे सहज ही वैराग्य आ जाएगा। और जितना वैराग्य होगा नष्ट मोह हो जाएंगे। यदि उन्होंने इन बातों का हम आधार लेकर उनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और उसको हम अपने पास खरीदते हैं तो नेचुरली है मेरा मेरा करके मुंह उसमें आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से भी नाता तोड़ो। तो इसलिए जितना हम अपनी बुद्धि में बाप का दिया हुआ वर्षा याद रखेंगे, हमारे भविष्य जो स्वर्ग का वर्षा है वो याद रखेंगे, उतना ही इस दुनिया के साधनों से और संबंधियों से हम नष्ट मोहा बनेंगे। क्योंकि आप हमको मालूम है मोह में दुखी है। जब मोह जिसके अंदर मोह है यदि उनसे हम अलग होते हैं, चाहे हमारा बच्चा है, हम पढ़ाई के लिए विदेश तो भेजना चाहते हैं पर जब बच्चा विदेश जाता है तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं, रो रो के छुट्टी देते हैं। इतने तक कि एक माता हमें कहती थी कि मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी और जब मैं जलेबी बनाती हूँ मैं खा नहीं सकती हूँ कि मेरे बच्चे को कौन वहाँ अमेरिका में खिलाएगा। तो क्या होता है कि मोह होता है तो ये हाल होता है कि उसको याद करके करके दुखी होते हैं। और यदि मर गया तो उसको कितना समय तक उसके लिए रोते रहेंगे और उसका समझो ये जो पिछड़ापन है वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्यार जरूर करना है, उन्हों की संभाल भी करनी है, बैलेंस रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को प्यार दिया, जो भी बाबा के सामने जाते थे समझते थे कि हाँ बाबा मेरे से जितना प्यार करते पता नहीं किसी से और किसी से नहीं करता होगा। तो हर एक को प्यार की भाषणा भी दी, परंतु जैसे कहते हैं ना याद करो न विसरो। तो किसी को याद भी नहीं करते थे तो किसी को भूलते भी नहीं थे। तो इसी से न किसी से मोह भी होता था परंतु सबको प्यार की दृष्टि से देखते थे। इतने तक कि बाबा हर एक को बच्चे बच्चे कह के बुलाते थे, चाहे मजदूर हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे चिड़िया हो, बाबा बच्चे बच्चे बच्ची यही कहते थे और उसी दृष्टि से देखते थे। मजदूर के पास भी विंटर में सर्दी के दिनों में यदि गर्म कपड़े नहीं होते थे तो बाबा लच्छू को बोलकर उनको गर्म कपड़े भी दिलाते थे। और अभी तक मधुबन में रस्म है कि हर सर्दी के दिनों में हर एक मजदूर को एक एक ब्लैंकेट दिया जाता है। तो इसी रीत से देखा जाता है कि बाबा ने प्यार से बच्चों की पालना की और जैसे बच्चों को रखा अपने को भी उसी सिंप्लिसिटी से रखा, सादगी से अपना जीवन भी बनाया। जो बच्चों को खिलाते थे वो खुद खाते थे। जैसे बेगरी पार्क में यदि बच्चों के पास बच्चों को सिर्फ छाछ और दौड़ा दिया ज्वार का या बाजर का, खुद भी वही खाते थे। हाँ, तो इसलिए बच्चों की संभाल भी की। जब पैसा बहुत था शुरू शुरू में तो रेशमी कपड़े देते थे और हर एक को रोज बादाम पिस्ता की मिठाई भी खिलाते थे। तो इसी से देखा गया कि कोई भी बच्चा होता था तो बाबा उनकी बहुत प्यार से संभाल करता था। कोई बीमार है उनको जाकर नहीं दृष्टि देकर उन्हों को दवाई देकर उन्हों की खातरी करता था। और जो भी आता था अभी भी देखो मधुबन में जो भी आएंगे उनकी बहुत प्यार से खातरी की जाती है और उनको घर की भाषणा आती है। कई बार विदेशी भी आते हैं तो जब आते हैं इतनी मुसाफरी करके कष्ट सहन करके, परंतु यहाँ आकर जो भाई बहनों का उनको प्यार मिलता है तो कहते हैं कि हमें तो लौकिक में भी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, इतनी हमारी पालना नहीं की है जितनी यहाँ के भाई बहन हमारी करते हैं। तो ये बाबा ने जो रस्म बनाई है खुद ने करके ये सब हम लोगों को सिखाया, जो आज भी मधुबन का कारोबार उसी रीत से चल रहा है कि हर बच्चा जब मधुबन में आता है उन्हों को गिफ्ट दी जाती है, टोली दी जाती है और दादियां मिलती जरूर है। कम से कम एक बार उस दिनों में तो बाबा आते ही पहले मिलते थे, फिर सौगात के लिए मिलते थे, विदाई के लिए भी मिलते थे। तो उन दिनों में तो थोड़े ही बच्चे थे, अभी तो लाखों की संख्या में हो गए। इसलिए दादियां तीन बारी नहीं मिलती परंतु फिर भी मिलती रहती हैं। तो ये क्या है कि जैसे दादियां और बाबा ने प्रेम से सबकी पालना की, हमें भी यही ध्यान में रखना है, चाहे लौकिक है अलौकिक है, भाई भाई की दृष्टि रखकर, उनसे इतनी प्रेम की दृष्टि देकर उनको सहयोग देना है, सुभावना रखनी है और उनके लिए कभी कभी कुछ सैक्रिफाइस करना है, त्याग करना है तो वो भी जरूर करना है। अभी सवाल रहा बेफिक्र बादशाह बनने का, क्योंकि क्या है कि यूजुअली ऐसे होता है कि जब घर गृहस्थ में रहते हैं तो समझते हैं कि हमें अपने परिवार की संभाल करनी है, चलाना है, इसलिए चिंता हो जाती है। परंतु जब ये समझेंगे कि ये बाबा का परिवार है, हम सिर्फ निमित्त है, ये निमित्तपन का भान रहने से चिंता नहीं रहेंगी। यदि ये होगा मैं उनको कमा कर खिलाता हूँ या हम उनको पका कर खिलाते हैं, हमारे ऊपर ये इतना आधारित है, तो क्या होता है गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं पना बाबा हमेशा कहते हैं छोड़ो और बाबा बाबा करते रहो, बाबा का सब कुछ है। तो इसलिए बाबा ने ये लेसन हमको घड़ी घड़ी पक्का करता है, जब मैं बोलता हूँ तो ये याद रखो मैं आत्मा हूँ, जब मेरा कहते हो तो ये याद रखो मेरा बाबा। इसलिए चिंता फिकर नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कि दुनिया में आजकल धन की बहुत गड़बड़ी है, रुपये की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, कईयों की नौकरियां छूट जाती है, कईयों को धंधे में नुकसान होता है, तो क्या होता है इस कारण कईयों को चिंता होती है। और कभी कभी जैसे सेंटरों में भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो लोगों को चिंता होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा। तो ये देखना है कि बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया, हर एक बात का बाबा ने हमें जवाब दिया है। कौन करेगा, मैं करूंगा, कब होगा, अब होगा, कब नहीं पूछना है, अब। बाबा कहते हैं नाउ और नेवर का स्लोगन, कि अब भी नहीं तो कभी नहीं, कब करेंगे नहीं, अभी करना है। कभी ये नहीं सोचो कि भाई मैंने किया नहीं है, कभी क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाई है, नई सेवा करने के लिए न्यूजीलैंड गए, तो उन दिनों में उनको तो बहुत उमंग उल्लास था, जवान थे, तो इसलिए उन्होंने कहा हम तो वहाँ जाएंगे, नौकरी ढूंढेंगे और सेंटर शुरू करेंगे। तो उस समय इतनी बचत तो होती नहीं थी खुद के पास ना, मेन सेंटर के पास, तो वो लोग क्या करते थे, पहले छोटे मकान लेकर किराए पर लेकर शुरू कर देते थे क्लास। अब उन्होंने सेकंड हैंड फर्नीचर लिया, सोफा सेट, परंतु सोफा सेट का कपड़ा भी खराब हो गया था, स्प्रिंग भी खराब हो गई थी। तो उन्होंने मन में सोचा कि हमने कोई न कोई जन्म में ये सोफा रिपेयर करने का काम जरूर किया होगा, यही समझ के कि सारे कल्प में 84 जन्म में कभी तो हमने ये काम किया होगा। और वो भाई कारपेंट्री भी करता जानता था, तो उसने क्या किया, सारा सोफा उखाड़ दिया, नई स्प्रिंग लाई, नया उसमें रुई भरा और नया कपड़ा लाकर उस पर बनाया और सोफा एकदम अच्छा जैसे नए जैसा बन गया। तो क्या है कि क्या होगा कैसे होगा सोचना नहीं है, करना है बाबा कराएगा और हो जाएगा। तो क्या होगा चिंता नहीं होगी और उस निश्चय से हमारी विजय जरूर होगी। तो इसलिए हमको देखना है कि परिस्थितियां आएंगी, परंतु परिस्थितियों का सामना करने की बाबा हमें योग द्वारा शक्ति भी दे देते हैं। इसलिए ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहेंगे तो क्या क्यों कैसे ये प्रश्न नहीं उठेगा और कोई चिंता नहीं होगी। और बाबा ने हमें युक्ति भी बताई है कि बाबा को सदैव अपना साथी बनाओ। तो यदि सर्वशक्तिमान हमारा साथी है तो चिंता क्यों होगी। और क्या है कि जितना हम निश्चिंत होकर चलेंगे तो क्या है बाबा की मदद भी रहेंगी। और ये भी देखा गया है कि जब हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं तो कोई भय की भी बात नहीं रहती है, चिंता की भी बात नहीं होती है। क्या है कि जो डरते हैं उनको सब डराएंगे और जिसका मोह होगा उसको डर भी ज्यादा होगा या तो चिंता भी होगी। क्योंकि समझो हमारे शरीर में मोह है तो क्या होगा चिंता, पता नहीं बीमार तो नहीं पड़ूंगी, खाना खाते समय सोचेंगे ये खाओ या नहीं खाओ, ये खाना हमको सूट होगा या नहीं होगा, ऐसे चिंता करते हैं। तो विदेश में तो कई है वो भोग लेने के लिए भी कहेंगे भाई ये अमृत में तो चीनी पड़ी है हमको तो चीनी नहीं खानी है, या भोग में चीनी है तेल है घी है हम नहीं खा सकते हैं, सभी चावल नहीं खा सकते हैं। तो जितना जितना न खाने से हमको ये बीमारी होंगी ये चिंता होंगी तो बीमारी जरूर आएंगी, उसका आह्वान करते हैं, होंगी होंगी करते हैं तो बीमारी आ जाएंगी। इसलिए बाबा का जो भी दिया हुआ है भोजन ब्रह्मा भोजन जितना प्यार से स्वीकार करेंगे तो वो प्यार से जो भोजन खाएंगे उसमें शक्ति भी आ जाएंगी। तो कभी भी बीमारी हुई तो भी चिंता नहीं करनी क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि किसी को कुछ गांठ शरीर में देखने में आई तो समझते हैं क्योंकि नेचुरली है कि संकल्प आएगा कि गांठ है पता नहीं कैंसर तो नहीं, तो चिंता हो जाएंगी कैंसर है, कैंसर की बीमारी सुना कि उस पेशेंट को भी चिंता हो जाएंगी और संबंधियों को भी चिंता हो जाएंगी, ये मर जाएगा तो क्या होगा हमारा हाल क्या होगा, हमारा सारा आधार उसके ऊपर था कमाने वाला है चला जाएगा तो क्या होगा। तो क्या होता है चिंता चिता समान है, इसलिए बाबा कहते हैं चिंता मत करो, जो होने वाला होगा वो और भी अच्छा होगा ना, बाबा ने हमेशा कहा है जो हुआ वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होना है वो और भी अच्छा होगा। तो ये यदि हमको ड्रामा की पॉइंट पक्की है तो हम चिंता नहीं करेंगे। तो इसलिए जितना नष्ट मोह होंगे निश्चिंत हो जाएंगे और फिर बाबा की मदद भी रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है कि आप मुसीबत में हो कहो मेरा बाबा और बाबा की मदद रहेंगे। उसके लिए मेरे पास एक दूसरा भी एग्जाम्पल है कि हमारी एक श्रीलंका की बहन थी रात को सवेरे सवेरे मुरली क्लास तो वहाँ जल्दी होता है 5:30-6 बजे, तो अंधेरे में बस स्टॉप से अंदर आ रही थी। तो जब आ रही थी तो रास्ते में इतनी लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और एक कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा था जो उसको लगा के इसकी दानत कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो वो तो मन में बोलती रही, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरा साथी, ऐसे बोलकर वहाँ से पास हो गई। उसके बाद कोई दूसरी बहन वहाँ से पास हुई तो इस भाई ने उसके ऊपर अत्याचार व्यभिचार किया। तो दिन के टाइम में रेडियो पर अनाउंस हुआ कि इस समय इस लेन में किसी ने कोई ऐसी शंकास्पद व्यक्ति देखी हो तो बोलना। तो उसने क्या किया, वो गई पुलिस स्टेशन पर और आदमी को देखा तो वही सवेरे वाला आदमी था। तो उसने पूछा कि मैं तो 5 मिनट पहले वहां से गुजर गई थी, आपने कुछ नहीं किया, और इस बहन को क्यों आपने मारा? तो कहता है आपके साथ तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, हम कैसे आपके ऊपर कुछ कर सकती हूँ। तो क्या है, जैसी हमारी स्मृति होती है ना, वैसा उनको साक्षात्कार होता है। इसलिए क्या है कि हमें हमेशा बाबा को अपना साथी बनाना है। और मेरा बाबा कहने से क्या होगा, कई बार हमने कईयों का ऐसे सुना, एक्सीडेंट में उसने बाबा को याद किया और कार भल एकदम खत्म हो जाती है, पर ब्राह्मण को कुछ नुकसान नहीं होता या बहुत थोड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमको देखना है कि यहाँ हमको माया जीत बनना है और निर्भय और निश्चिंत बनना है। तो जितना बाबा पर विश्वास रखेंगे, साथी बनाएंगे, तो निश्चिंत रह सकेंगे। और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं बेफिकर बादशाह, अर्थात बादशाह कौन बन सकता है? यहाँ बाबा कहते हैं बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अर्थात यहाँ हमें मन कर्म इंद्रियों के ऊपर अभी राज्य करना है, वह हमारे कंट्रोल में हो, हमारे मालिक बनकर हमको चलाए नहीं, पर हम उनके मालिक बनकर उनको ऑर्डर में जैसे चलाना है ऐसे चला सके, तब हम कहेंगे कि हम मन के राजा है या कर्म इंद्रियों के राजा है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि पावरफुल योग द्वारा बाबा से शक्ति लेनी है। जो भी शक्ति भरनी है, चाहे हमको स्नेह की शक्ति भरनी है, चाहे हमें सब संबंधों का सुख लेना है, चाहे हमें निर्भयता की शक्ति लेनी है, तो सामना करने की शक्ति लेनी है, और कोई भी कार्य जो उसको हल करने की शक्ति लेनी है, विघ्नों को पार करने की शक्ति लेनी है, तो इसके लिए नेचुरली है कि हमारा पावरफुल योग होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने हमको युक्ति बताई है कि 3 बिंदु याद रखो, मैं आत्मा, बाबा परमात्मा और ड्रामा, ये 3 बिंदु की यदि याद होंगी तो नेचुरली है कि हमारा योग पावरफुल होगा और हम व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप दे सकेंगे। तो नेचुरली है यदि हमने व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप दिया तो समर्थ संकल्प होंगे, बाबा की याद रहेंगी। तो उस बाबा की याद द्वारा हमें सर्वशक्तियां अपने में भरनी है, जिससे हम अपना स्वभाव संस्कार भी बदल सके। क्योंकि बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह माना। बादशाह क्या है? बादशाह की विशेषता कि उसमें रॉयल्टी होंगी, तो हमारा बोलना चालना सब रॉयल हो, पुराने स्वभाव संस्कार ना रहे। बोलना भी बाबा कहते हैं धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और एसेंसफुल हो। ऐसे नहीं कि हमको गुस्से से बोलने की आदत है या आवाज से बोलने की आदत है, फोर्स से बोलने की आदत है, तो ये पुरानी आदत अब छोड़नी है और रॉयल्टी से हमें सबके साथ बात करनी है, किसी का इंसल्ट नहीं करना है, मधुरता से बात करके जो भी समझाना है प्यार से समझाना है, अपमान नहीं करना है। जैसे मम्मा भी थी हमारी, कितनी रॉयल थी, कभी बड़े आवाज से नहीं बोलती थी और हरेक के साथ प्यार से चलती थी। तो ऐसे हमें तो हमेशा शिक्षा दी गई है कि आप रॉयल्टी से बात करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो। और यदि कोई भी कार्य बड़ा है, क्या होगा होगा नहीं होगा नहीं, परंतु यदि हमारा हरेक के साथ स्नेह है ऑटोमेटिक सहयोग मिल जाएगा, और सहयोग मिल जाएगा तो कार्य सफल जरूर हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि हम व्यक्ति को भी परख सके, परिस्थिति को भी परख सके और उसी रीत से हम प्लान बनाए। क्योंकि प्लान बनाने के टाइम भी हम औरों का सहयोग लेंगे तो क्या होगा, सहज ही होगा। तो हमारा जैसे बाबा ने यूनिफॉर्म भी बनाया है, कितना मर्यादा युक्त रॉयल है। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का इतना मर्यादा पूर्वक ड्रेस है, जो अपना ड्रेस से अपना बॉडी को या बॉडी के फिगर को दिखाता नहीं है। इसी रीत से बाबा ने हमारा यूनिफॉर्म भी ऐसा बनाया है कि इससे हमारा मर्यादा रहती है और किसी को फालतू किसी की दृष्टि आकर्षित नहीं हो सकती है। और बाबा ने हमको ये भी कहा है कि एक तरफ बालक बन जाओ, दूसरे तरफ मालिक। हर एक कार्य में मैं बच्चा हूँ, बाबा हमारा बाप है, तो बाप बच्चे को चिंता होती है क्या? बच्चे को चिंता नहीं होगी। तो बाप के ऊपर जितना हम भरोसा रखकर बाबा के ऊपर छोड़ देंगे कि कराने वाला वो है, उसकी जिम्मेवारी है, तो नेचुरली है हम हल्के भी रहेंगे और चिंता भी नहीं होंगी। तो बाबा ने ये भी सिखाया है हमको कि बैलेंस रखो, कि एक तरफ तो निमित भाव भी हो तो दूसरे तरफ हमारी बुद्धि में ये भी हो कि हम जिम्मेवार हैं। ऐसे नहीं निमित्त है करके बाबा के ऊपर छोड़ दो। कार्य जरूर करो परंतु चिंता नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेवार रहना है, परंतु साथ साथ निमित्त बनकर चलना है। तो जितना जितना हम प्यार स्वरूप बनेंगे उससे क्या होगा, हर एक हमें मदद करेगा, हम उनको सहयोग देंगे वो हमको सहयोग देगा। तो इसलिए हमें प्यार स्वरूप बनकर औरों को सहयोग देना है, वो हमें और सहयोग देंगे तो चाहे हम कितना भी कठिन कार्य करेंगे, कितना भी बड़ा प्लान बनाएंगे, हमारी जरूर विजय होंगी। और ये भी हमें याद रखना है, हम शिव शक्ति है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो जितना ये याद रहेगा कि हम मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी है, तो इससे क्या होगा, कमजोरी के ख्यालात नहीं आएंगे। जब कमजोरी के ख्यालात आते हैं तो चिंता भी होती है, परंतु मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, असंभव नहीं। और हमने देखा है कि कई बातें कई लोगों ने अपने जीवन में जो पहले कभी नहीं किया था, अभी बाबा के बनने के बाद वो कई कार्य इतनी कुशलता से करते हैं, जो नेचुरली है कि यही कहना पड़े कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा की कमाल, जो हमें क्या से क्या बना दिया, हमने क्या चाहा था और बाबा ने हमें क्या क्या दे दिया। तो ये हम गीत तो गाते हैं, सुनते हैं कि हमने क्या मांगा था, आपने क्या दे दिया। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि बाबा हमें सर्व खजाने देते हैं, हमें सिर्फ ये ही ख्याल करना है उन खजानों को हम जमा करते रहें, ना कि व्यर्थ गंवाएं। क्योंकि यदि हम उस खजानों को व्यर्थ गंवाते हैं तो नेचुरली है कि हम कमजोर रह जाएंगे। इसलिए अभी भी आपने क्लास सुना, व्यर्थ नहीं सोचना है, व्यर्थ छोड़ के समर्थ बनना है, वो बाबा हमेशा कहते रहते हैं। तो जो समर्थ है, नेचुरली है, उनको कोई भी चिंता नहीं रहेंगी। तो इसलिए बाबा जो ज्ञान का खजाना देते हैं, उस खजाने को भी हमें सिर्फ मनन चिंतन या श्रवण नहीं करना है, उसका स्वरूप बन जाना है। विशेष ड्रामा और कर्मा, ये दो बातों की हमें यदि बुद्धि में हमेशा रहे, स्मृति में रहे, तो हमारी स्थिति ऐसी पावरफुल हो जाएंगी जो हम सदैव निश्चिंत रह सकते हैं। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने हमें बहुत सुमधुर शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातों से लाभान्वित किया। अभी एक बहन हम सभी के समक्ष गीत सुनाएगी और हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।
रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले। बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा। सत्य से ही जीऊंगा आंधी हो या तूफान। रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ध्यान कभी प्रभु का तू ना खोना, साधना में उनके पल पल रहना, ध्यान कभी प्रभु का तू ना खोना, साधना में उनके पल पल रहना, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान, झुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान।